भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान।
अर्जुन ने इस तीसरे अध्याय के अंतिम चरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, अथ केन प्रयुक्तोयम् पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजिता, कि बलपूर्वक और बिना इच्छा के वो कौन सी शक्ति है जिसके द्वारा कोई जीव पाप करने के लिए प्रेरित होता है। और पिछले बुधवार को हमने भगवान का उत्तर प्रारंभ किया। श्री भगवान वाच, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्व महाशनो महापापमा विद्येनम इह वैरिणम। तो इस श्लोक का सारांश इस प्रकार से था, भगवान ने अर्जुन को कहा कि काम वासना का जन्म स्थान क्या होता है, उसके कार्यकलाप परिणाम क्या होता है और जीव के साथ उसका संबंध क्या है। तो काम वासना का जन्म स्थान रजोगुण है और कार्यकलाप है महाशनो, परिणाम है महापापमा और जीव के साथ उसका संबंध है नित्य वैरी महाशत्रु। और महाशत्रु इसलिए क्योंकि वो जीव का मित्र बनकर जीव पर प्रहार करता, इसलिए महाशत्रु बताया गया। तो अब भगवान आगे प्रारंभ कर रहे हैं इसी काम का विश्लेषण करते हुए। धूमेना व्रियते वहनेर यथा दर्शो मलेन च यथोल बेना व्रतो गर्भस तथा तेने दमावृतम। धूमे श्लोक में भगवान कामवासना तीन प्रकार से कैसे जीवात्मा और जीवात्मा के ज्ञान को ढक देता है इसके विषय में बता रहे हैं। बहुत सुंदर उदाहरण भगवान दे रहे हैं। अनुवाद इस प्रकार से है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो तीन उदाहरण भगवान ने आज के श्लोक में दिए हैं। तो हमारे आज के चर्चा के विषय इस प्रकार से रहेंगे, पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध, धुएं एवं अग्नि के उदाहरण की व्याख्या, मैल एवं दर्पण के उदाहरण की व्याख्या, शिशु एवं गर्भ के उदाहरण की व्याख्या और अंत में उच्च कोटि के भक्तों के ज्ञान का आवरण। वो भी ढके रहते हैं परंतु वो किसी और कारण के वजह से। तो पिछले श्लोक से आज के श्लोक का संबंध, जैसे हमने शुरुआत में चर्चा की, पिछले श्लोक में भगवान ने काम कैसे महाशत्रु है और काम कैसे प्रेरित करता है, जीव को पाप में लगाता है, इसके विषय में चर्चा की भगवान ने। तो काम वासना जो पाप कराने वाला शत्रु है, संक्षिप्त रूप में ये भगवान ने कहा। और आज के श्लोक में भगवान ये आगे बता रहे हैं कि वह पाप की शुरुआत कहां से होती है। कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसका कोई कारण होगा, तो उसके बहुत से कारण होते हैं परंतु मुख्य कारण, या ये कहें कि उसकी बुनियाद उस पाप करने की नींव अज्ञान, अज्ञान के वजह से। और आज के श्लोक में वो ज्ञान अलग अलग मात्राओं में जीव के ऊपर कैसे एक आवरण का काम करता है, ढक देता है, इसकी व्याख्या भगवान बहुत ही विस्तार से एक ही श्लोक में कर रहे हैं। एक श्लोक में भगवान ने विस्तार से कैसे ज्ञान ढक जाता है जीवात्मा का, कौन सा ज्ञान, दिव्य ज्ञान कैसे ढक जाता है, इसकी व्याख्या की। तो सबसे पहला उदाहरण आज के श्लोक में भगवान ने इसका दिया है, अग्नि का धुएं से ढका जाना। अब कई बार हमने अग्नि को देखा है, इस्तेमाल भी किया है, जैसे यहां पर आप देख रहे हो। तो अग्नि जब भी प्रज्वलित होती है तो मुहावरा है ना कि बिना अग्नि के धुआं नहीं। तो यदि कहीं दूर भी आपने धुआं देखा तो तुरंत आप किस निष्कर्ष पर आ सकते हो, अग्नि यदि दिखाई भी नहीं दे रही परंतु अग्नि के वजह से ही वो धुआं निकल रहा है। तो यहां पर भगवान ये सबसे पहला उदाहरण अर्जुन को सुना रहे हैं कि अग्नि और धुआं, इनमें दोनों में संबंध क्या है, कि अग्नि वो तो तेज फैला रही है परंतु जो धुआं है वो अग्नि के तेज को ढकने का कार्य कर रहा है। जैसे यहां पर आप देखिए, आप अगर अग्नि पर गौर करोगे तो अग्नि बहुत तेजस्वी दैदीप्यमान दिख रही है, परंतु आपके देखने में थोड़ा अवरोध आ रहा होगा। उस तेजस्वी अग्नि को देखने में जो अवरोध आपको आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है, धुएं के वजह से। और अगर आप जितने निकट इस अग्नि के रहोगे उतना धुआं आपकी आंखों में जाएगा और उतना कम आप अग्नि का जो तेजस्वी स्वरूप है उसको देख पाओगे। तो कहने का आशय क्या है, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान यहां पर तुलना अग्नि की ज्ञान से कर रहे हैं। हमारा जो ज्ञान है, दिव्य ज्ञान हमारे अंदर, क्योंकि हम सच्चित आनंद है, तो जो चित रूप है हमारा वो है हमारा, हमारे अंदर भगवान के प्रति दिव्य ज्ञान या आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। तो इस आत्म साक्षात्कार के ज्ञान, दिव्य ज्ञान की तुलना भगवान अग्नि से कर रहे हैं। बहुत बार हमारे शास्त्रों में ज्ञान की तुलना अग्नि से की गई है, परंतु वो अग्नि कौन सी है, इस भौतिक संसार वाली जिसके अंदर धुएं बहुत है, और धुएं की तुलना काम से की है कि वही अग्नि वही ज्ञान को ये काम ढक देता है। तो ये उदाहरण, इसका और आगे हम हमारे आचार्य क्या बताए हैं इस उदाहरण को लेके, कि जीव इस उदाहरण के संदर्भ में कहां पर स्थित है, कौन से गुण में स्थित है, हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। अगला उदाहरण भगवान दे रहे हैं दर्पण का। तो दर्पण उसका कार्य है कि वो जो भी उसके सामने आए उसका प्रतिबिंब दिखाए, ये दर्पण का कार्य। यदि पूछा जाए कि दर्पण का स्वधर्म क्या है, दर्पण का कर्तव्य क्या है, तो दर्पण का एकमेव कर्तव्य है कि जो भी उसके सामने आए उसका प्रतिबिंब जैसा वो है वैसा दिखाए, वो है प्रामाणिक दर्पण। परंतु दर्पण के ऊपर यदि मैल जम जाता है, तो वो अपना स्वधर्म नहीं निभा पा रहा, प्रतिबिंब दिखाने का जो स्वधर्म है वो दर्पण नहीं निभा पा रहा। तो अब यहां पर यह भी बहुत सरल है समझना कि इस उदाहरण से भगवान दर्पण की तुलना किससे कर रहे हैं, ज्ञान, हमारे दिव्य ज्ञान से, दर्पण की तुलना दिव्य ज्ञान से और काम की तुलना मैल उसके ऊपर। तब ये जो उदाहरण भगवान ने जो दूसरा दिया और इसके पहले वाला उदाहरण अग्नि और धुएं का, इन दोनों में अंतर क्या है, क्या अंतर है ये दोनों उदाहरणों में? अचानक क्या भगवान को दर्पण याद आ गया इसलिए दर्पण का उदाहरण दे दिया? हाँ, अच्छा, देखिए अग्नि और धुआं और दर्पण और मैल, इसमें आप अगर इस उदाहरण पर गौर करें तो धुआं जो है वो पूर्ण रूप से अग्नि को नहीं ढक पाता, कभी थोड़ी तो अग्नि दिखाई देती है धुएं के बीच से, परंतु मैल वो दर्पण को पूरा ढक सकता है। ये विशेष दोनों में अंतर है। एक और अंतर ये है कि धुआं जो है वो अग्नि को कभी, अग्नि का शमन नहीं कर सकता। धुआं पानी का कार्य नहीं करता है, हां कुछ हद तक धुआं अग्नि को ढक सकता है परंतु अग्नि को बुझा नहीं सकता धुआं। परंतु मैल दर्पण का जो कार्य है उसको पूरा छिपा सकता है। तो ये दो विशेष अंतर, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि भगवान इन दोनों उदाहरणों से हमको दो लेवल पर बता रहे हैं। काम वासना का जो आवरण है जीव के ज्ञान के ऊपर, उसकी इंटेंसिटी के दो लेवल भगवान बता रहे हैं। तो यदि मैं पूछूं कि ये जो अभी आप समझे दो लेवल, ये दो लेवल में से ज्यादा इंटेंस लेवल किसका है इन दोनों में से, अग्नि का या दर्पण का? दर्पण का, क्योंकि कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु अग्नि और धुएं के उदाहरण में थोड़ी थोड़ी अग्नि दिखाई देती है, अग्नि की गर्माहट महसूस कर सकता है कोई, परंतु दर्पण जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। जब मैल उसको पर चढ़ जाता है तो वो निष्क्रिय हो जाता है। अब तीसरा उदाहरण, शिशु का गर्भ से ढका जाना। अब देखिए भगवान हमको इससे भी इंटेंस लेवल पर ले जा रहे हैं। ये थर्ड लेवल है काम की इंटेंसिटी का। अब ये जो उदाहरण है शिशु का, भ्रूण का गर्भाशय से आवृत होना, इसमें और पिछले उदाहरण में और उसके पिछले उदाहरण में क्या अंतर है? भगवान बहुत सोच समझ के उदाहरण दिए हैं। एक आपको हम हिंट देते हैं, योग में एक आसन है जिसका नाम है गर्भासन। पतंजलि योग सूत्र में एक आसन है जिसका नाम है गर्भासन, और इसी प्रकार का है वो आसन। जैसे यहां पर आप देख रहे हो ये जो शिशु गर्भ के अंदर कौन से आसन में है, गर्भासन में। हिंट मिला कुछ आप? हाँ नहीं नहीं हाँ, पॉस्चर से है। हिंट ये है कि मैल और दर्पण के उदाहरण में दर्पण का आकार नहीं बदलता, मैल ढक देता है परंतु दर्पण का आकार नहीं बदल पाएगा, परंतु जो गर्भाशय है वो शिशु का आकार ऐसे कर देता है इस आसन में। तो ये शिशु इस आसन में क्या शौक से है अंदर, उसको उसकी मर्जी से इस आसन में वो है, आनंद आ रहा है उसको इसके अंदर? नहीं, क्योंकि वो गर्भाशय का शेप ऐसा है, इसलिए उस शिशु को उस गर्भाशय के आकार के अनुसार 9 महीने वैसे रहना पड़ता है। एक तो ढका हुआ है, आवरण ज्यादा थिक है, ज्यादा गहरा आवरण है, और केवल उतना ही नहीं, जो मैल दर्पण को नहीं कर पाता, जो धुआं अग्नि को नहीं कर पाता, वो गर्भाशय शिशु पर करता है, उसका आकार बदल देता है। तो इसमें भगवान इस तीसरे उदाहरण से काम वासना का जो आवरण है उसकी सबसे इंटेंस लेवल को बता रहे हैं इस तीसरे उदाहरण से। तो ये जीव के कर्मों के अनुसार, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है, उसके कॉन्शियस सबकॉन्शियस जो उसकी चेतना होती है उसके अनुसार उस पर निर्भर करता है, और वो कौन सी योनि में है वो भी चर्चा करेंगे, उस पर निर्भर करता है कि आवरण कितना गहरा है या कितना पतला है या कितना कम गहरा है। तो अब हम आपको कुछ और उदाहरणों से समझाना चाहेंगे। जैसे कि भगवान ने 3 उदाहरण दिए, तो मैं 3 उदाहरण सोच रहा था, थोड़े हमारी कलयुग की बुद्धि को समझने के लिए 3 उदाहरण। पहला उदाहरण, सर्जन क्या कहते हैं, दस्ताने जब सर्जन पहनता है तो ये सर्जन के ग्लव्स हैं, सर्जन के दस्ताने। क्या कहते हैं आप लोग नासिक में? हाँ नहीं 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 मराठी में क्या? हाथ मोजे। अच्छा पहली बार इंटरेस्टिंग वर्ड है, मोजे को हाथ में पहन लेना, हाथ मोजे हो गए, मोजेदार शब्द है। तो सबसे पहला उदाहरण हाथ मोजे का ये है, सर्जन सर्जिकल ग्लव्स, उसके दस्ताने। दूसरा उदाहरण विकेट कीपिंग ग्लव्स, वो भी दस्ताने पहनता है। इसने भी दस्ताने पहन रखे हैं, अब इसका आवरण थोड़ा मोटा हो गया है कि नहीं? यदि सर्जन सर्जरी करने के लिए ये ग्लव्स पहन के जाए जैसे एक बार एक सर्जन ऑपरेशन थिएटर में फूलों की माला लेके गया, तो पेशेंट पूछता है ये फूलों की माला लेके क्यों आया भाई, तो सर्जन बोलता है कि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो माला मेरे लिए, और अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा राम नाम सत्य। तो यहां पर देखिए, अब यदि मैं आपको ये पूछूं, ये 2 उदाहरणों से क्या समझ में आ रहा है आपको, कि पहला था सर्जिकल ग्लव्स और अब है विकेट कीपिंग ग्लव्स, तो क्या दोनों में अंतर क्या है? With surgical gloves, a surgeon can perform very fine activities. बहुत ही रिफाइंड, इसलिए पतला होता है वो दस्ताना जो होता है, बहुत पतला होता है. क्यों? ताकि बहुत जो रिफाइंड सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, सूक्ष्म सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, वो कर सके. और ये जो विकेट कीपिंग ग्लव्स है, इसके अंदर इतने सूक्ष्म कार्य नहीं होते, क्योंकि उसको वो इतनी भारी बॉल पकड़नी होती है और वो इतनी तेज बॉल आती है, तो इसलिए वो इतने पतले पतले दस्ताने पहनेगा तो उसके हाथ की हालत हो जाएगी. इसलिए द एक्टिविटी इज लेस रिफाइंड इन दिस, देयरफॉर द कवरिंग इज ग्रोस. द एक्टिविटी इज ग्रोस, द कवरिंग इज ग्रोस. इन सर्जिकल ग्लव्स द एक्टिविटी इज रिफाइंड, देयरफॉर द कवरिंग इज रिफाइंड ऑल्सो. इसने भी ग्लव्स पहन रखे हैं. अब देखिए, इनके इसके जो ग्लव्स होते हैं उसमें तो उंगलियां भी नहीं होती, वो सब पूरी चारों उंगलियां और अंगूठे बस एक साथ अंदर जाते हैं. और यहां पर एकमात्र कार्य इस महानुभाव का क्या है? मुक्का मारना. तो वो खुद भी जो शक्ति लगाता है और उसके ऊपर ये जो बॉक्सिंग ग्लव्स पहनता है. एक बार हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में एक नया व्यक्ति आया और हमारे गौरांग प्रभु वो आरती कर रहे थे, दोपहर की आरती. तो उन्होंने आरती पूरी की और ये व्यक्ति, जैसे लोग फल लेके आते हैं, नारियल लेके आते हैं भगवान को भोग चढ़ाने के लिए, तो ये बॉक्सिंग ग्लव्स लेकर आए. और वो हमारे गौरांग प्रभु को कहता है कि ये राधा गोपीनाथ को ऑफर करो. कलयुग में क्या पता भगवान को क्या क्या ऑफर करेंगे लोग. तो उन्होंने पूछा कि ये क्या ऑफरिंग है, ये कौन सी ऑफरिंग है भाई, बॉक्सिंग ग्लव्स? बोले कि मेरा अगले हफ्ते मैच है, फाइनल है, फाइनल में मैं पहुंचा हूं, तो ये मैंने नए बॉक्सिंग ग्लव्स खरीदे, तो मैं चाहता हूं कि ये गोपीनाथ का महा बने, ताकि फिर मैं जब उसको मुक्का मारूंगा तो उसको महा मुक्का मिलेगा. तो अब इसमें जो व्यक्ति कार्य करता है वो कार्य एकदम ग्रोस लेवल पर है. तभी आप लोग समझ गए होंगे कि भगवान ने जो तीन उदाहरण दिए और ये जो तीन उदाहरण हमने लिए हैं, क्या संबंध है. अग्नि और धुएं का जो उदाहरण है वो कौन से उदाहरण से हम कंपेयर कर सकते हैं? सर्जन के जो दस्ताने. और जो दूसरा उदाहरण दर्पण और मैल का, उसकी तुलना हम कर सकते हैं विकेट कीपिंग ग्लव से, और शिशु और गर्भाशय के उदाहरण का इससे. तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि सत्वगुण जो सर्जिकल ग्लव्स हैं या अग्नि और धुआं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जब व्यक्ति सत्वगुण में स्थित होता है तो उसके ऊपर काम का आवरण जैसे अग्नि के ऊपर धुएं के आवरण के समान है, जैसे कि एक सर्जन के दस्ताने. रजोगुण है ये विकेट कीपिंग ग्लव्स, और तमोगुण है जिसके ऊपर आवरण सबसे थिक है, और शिशु और गर्भाशय का उदाहरण फिर वो तमोगुण का उदाहरण है कि जो तमोगुण में स्थित है, जो रजोगुण में स्थित है, जो सत्वगुण में स्थित है. तो गुण के अनुसार उनके ऊपर आवरणों की इंटेंसिटी होती है उनके गुण के अनुसार. या ये भी कह सकते हैं कि आवरण के अनुसार वो कौन से गुण में स्थित है ये पता लगाया जा सकता है. अब ये उदाहरण हमने पहले भी लिया है, रामायण, एक ही परिवार में तीन भाई, विभीषण सत्वगुण में स्थित, रावण रजोगुण में स्थित और कुंभकर्ण तमोगुण में स्थित। तो ये रामायण से उदाहरण हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कलयुग में एक ही व्यक्ति के अंदर ये तीनों आवरण हैं, एक ही व्यक्ति के अंदर ये तीनों दस्ताने हैं, एक ही व्यक्ति के अंदर विभीषण भी है, रावण भी है, कुंभकर्ण भी है, तीनों भाई एक ही व्यक्ति के अंदर है। इसलिए हम अनुभव करते हैं कि सुबह सुबह साधारणतः आजकल भी स्थिति बिगड़ती जा रही, परंतु फिर भी सुबह सुबह लोगों की चेतना थोड़ा उठते सो उनको सत्वगुण के कुछ कार्य करना अच्छा लगता है, भजन इत्यादि, सुगम संगीत ये सुनना अच्छा लगता है। फिर धीरे धीरे जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ता है तो रजोगुण भी चढ़ने लगता है, और फिर पैसा पैसा पैसा, कहां है पैसा, ये वो सब शुरू हो जाता है। और फिर जैसे सूरज ढलता है फिर बाद में बोतलें खुलती है। तो एक ही व्यक्ति एक ही दिन के अंदर विभीषण का संग करता है, रावण का संग करता है और कुंभकर्ण का संग करता है। और कई तो ऐसे हैं कि विभीषण को तो बर्खास्त कर दिया है, जैसे रावण ने कर दिया था, तो विभीषण तो जाते रहे, विभीषण तो है ही नहीं, अभी बचे हैं केवल रावण और कुंभकर्ण। उन्होंने अपना साम्राज्य कलयुग में, अधिकांश प्रभुपाद कहते हैं कि साम्राज्य किसका है, रजोगुण और तमोगुण का। मैक्सिमम पीपल ऑफ कलयुग आर सिचुएटेड इन रजोगुण एंड तमोगुण। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अलावा बहुत से अधिकांश लोग उसमें स्थित है, नहीं, हम लोग भी अधिकांश, हमारा समय जा रहा है सोने में और इंद्रिय भोग में, पैसे कमाने में इत्यादि। हम किसमें स्थित हो रहे हैं ज्यादा? रजोगुण और तमोगुण। और उससे समझ में आ रहा है कि कौन सा आवरण हमारे ज्ञान को किस अवस्था से, किस इंटेंसिटी से ढक रहा है, वो हमको यहां पे समझना है। तो अब हम वो एक एक उदाहरण लेंगे जीव की चेतना का विकास। तो सबसे पहले प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि शिशु एवं गर्भ का जो उदाहरण भगवान ने दिया, तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ये जो इतना थिक आवरण, ये जो वृक्ष योनि है, अब देखिए उनके अंदर चेतना है, उनके अंदर आत्मा है, वृक्षों के अंदर भी आत्मा है, परंतु उस चेतना को व्यक्त करने की जो फैसिलिटी है वो नाम मात्र की है। एक वृक्ष के अंदर आत्मा है, कैसे आप पहचानोगे? ऐसा नहीं कि आप वृक्ष के सामने जाकर पानी लेकर जाओ तो अचानक उसकी जो टहनियां हैं वो पानी की ओर ज्यादा जाएंगी। हो सकता है कि कई ऐसे लक्षण दिखे, परंतु ये ऐसे लक्षण कई वृक्षों में तुरंत नहीं दिखते, तो उनको व्यक्त करने, उनकी चेतना को व्यक्त करने की जो फैसिलिटी, सुविधा है वो नहीं के बराबर। हाँ, वृक्ष उग रहा है परंतु हमको दिखता नहीं कैसे वो उग रहा है, कितना बड़ा हो रहा है, कब कौन सी स्थिति से गुजर रहा है। तो वैसे ही जब दिव्य ज्ञान के ऊपर इतना बड़ा आवरण उस काम का रहता है, तो उसकी जो चेतना है, उसका जो ज्ञान है, व्यक्त करने के लिए उसको बहुत लेयर से गुजरना पड़ता है। इसलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य में वृक्ष योनि का उदाहरण दिया है। दर्पण एवं मेल, अब यहां पर आवरण की स्थिति थोड़ी कम है, इंटेंसिटी थोड़ा कम है, लेयर्स थोड़े कम है, इसलिए जानवर, अब जानवर जो हैं वो उनके अंदर हमको व्यक्त रूप से दिख सकता है कि हाँ ये जीवित है, ये चल रहा है, ये घूम रहा है, ये अब खा रहा है, सो रहा है, भाग रहा है, बैठ रहा है, जो भी कुछ। तो जानवरों के अंदर उनकी चेतना का जो विकास है उसका व्यक्तिकरण दिखता है। और फिर जो पहला उदाहरण भगवान ने दिया अग्नि एवं धुआं, वो हम मनुष्य हैं, कि हमारे अंदर कैसे हम समझें कि चेतना का विकास सबसे अधिक है, क्योंकि आज के श्लोक को हम समझ पा रहे हैं, बाकी के उदाहरणों को समझ पा रहे हैं, बाकी के जो दो हैं वो हमारे उदाहरण को नहीं समझ पाएंगे। जैसे जानवर जो हैं, वृक्ष जो हैं, वो कभी समझ नहीं पाते कि ये मनुष्य ये हर बुधवार को यहां एकत्रित चुपचाप कैसे बैठे रहते। चिड़िया अगर हमको देखे, यहां पे तो कोई दाना भी नहीं मिल रहा चुगने के लिए, तो क्यों ये लोग क्या कर रहे हैं बैठ बैठ के। कुत्ते, वो ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते कि ये एक साथ बैठकर चुप कैसे और सब अलग अलग गली से आए। हम लोग एक गली के होके भी भोंकते रहते हैं और ये लोग पूरे नासिक के कितने कितने गलियों से आए फिर भी चुपचाप बैठे रहते। तो उनके अंदर वो विकसित चेतना या बुद्धि नहीं है समझने के लिए कि हमारे ऊपर कितना आवरण है। हम ये समझ पाते हैं कि हमारे ऊपर आवरण कितना गहरा है। इसलिए देखिए आज का श्लोक हम मनुष्यों के लिए हमारा उदाहरण देते हुए और भगवान हमको सतर्क कर रहे हैं कि यदि हम इस भगवद गीता के ज्ञान की तलवार से हमारे आवरणों को नहीं काटें तो हमारे जो आवरण हैं वो और गहरे होते जाएंगे, अर्थात हम दूसरी योनियों में गिरते जाएंगे। ये भगवान हमें चेतावनी दे रहे हैं आज के श्लोक के द्वारा। तो ये प्रभुपाद के जो तात्पर्य है उसके अनुसार ये जो तीन योनियां हैं उनकी स्थिति और ये तीन आवरण हैं उनके संदर्भ में सुनाया गया। अब शास्त्र से हम कुछ उदाहरण लेते हैं, जो भगवान ने ये तीन आवरण बताए हैं और इनके संदर्भ में शास्त्र से कुछ उदाहरण लेते हैं। तो अग्नि एवं धुआं, इसमें उदाहरण लेंगे प्रहलाद महाराज का, कि प्रहलाद महाराज को दिव्य ज्ञान किसने कब और कहां दिया। नारद मुनि ने दिया, कब दिया, जब उनके पिता हिरण्यकशिपु वो तपस्या करने के लिए गए। और कहां दिया, जब प्रहलाद महाराज गर्भ में थे। तो नारद मुनि ने भागवत कथा सुनाई कयाधु को, जो कि प्रहलाद महाराज की माता थी, और कयाधु वो शुद्ध भक्त नहीं बनी। देखिए नारद मुनि सुना रहे हैं कयाधु को, परंतु शुद्ध भक्त कौन बना, गर्भ के अंदर प्रहलाद। तो गर्भ के अंदर होने के बावजूद प्रहलाद महाराज के अंदर पहले से सुकृति थी। नरसिंह पुराण में प्रहलाद महाराज के पिछले जन्मों के विषय में बताया है कि कैसे अपने पिछले जन्म में जो भी वो थे तो वो एक स्त्री से आकृष्ट थे और वो उस स्त्री से मिलने के लिए एक जगह निर्धारित की थी उन्होंने, और वो जगह वो नरसिंह भगवान का मंदिर था। और उस दिन वो जो स्त्री आनी थी वो आ नहीं पाई, तो ये भूखे प्यासे रहे, और क्योंकि स्त्री से मिलना था तो उन्होंने पूरा मंदिर का मार्जन किया। और उस दिन नरसिंह चतुर्दशी भी थी, तो फास्टिंग हो गया, सेवा हो गई, सुकृति हो गई, है ना। अज्ञात सुकृति बोलते हैं इसको, कि न जानते हुए उनको वो अज्ञात सुकृति हुई, इसलिए अगले जन्म में जब वो कयाधु के गर्भ में, तो नारद मुनि भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया तो इनकी जो अग्नि है वो और प्रज्वलित होने लगी। धुआं कम होते गया, अग्नि प्रज्वलित होने लगी। तो ये उदाहरण है कि जब कोई व्यक्ति सत्वगुण में स्थित रहता है उसके अंदर पहले से अज्ञात सुकृति होती है। इसलिए आप देखो हमारे हरे कृष्ण आंदोलन में भी हमने अनुभव किया है कि कई होते हैं वो तुरंत, अरे इतना उनको नेचुरल लगता है चैंटिंग करना, तिलक लगाना, कंठी माला, वैष्णव पद्धति से जीवन जीना, बहुत उनके लिए नेचुरल तुरंत हो जाता है। और कई लोगों को सालों साल लग जाते हैं, फिर भी अरे ये तिलक कैसे लगाए, ये मैं कांदा लहसुन कैसे छोड़, ये मैं चाय कॉफी है, ये माला है, उनको बहुत अननेचुरल लगता है। क्यों? क्योंकि वो पहले से वो स्टॉक नहीं है, धुआं के बदले मैल हो रहा है दर्पण के ऊपर, या गर्भाशय और शिशु उसकी तुलना हो रही। तो यहां पर प्रहलाद महाराज तुरंत पैदा होते ही प्रीचिंग चालू किया उन्होंने, पैदा होते ही उनका लेक्चरिंग चालू हो गया, भागवत कथा देने लगे अपने क्लासरूम्स में क्लासमेट्स को, और कितनी कम उम्र में, 5-6 साल की उम्र में ही भगवान का दर्शन, नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ और वो इतने बड़े राजा बने, और आगे चलकर कितने सालों वो ऐसे एक राज ऋषि के रूप में उन्होंने सेवा की भगवान की। तो ये सब तुरंत कैसे हुआ? क्योंकि आवरण बहुत कम था और तुरंत फैनिंग, वो अग्नि के ऊपर नारद मुनि का फैनिंग हुआ। दूसरा उदाहरण है दर्पण एवं मैल का, ध्रुव महाराज का। अब ध्रुव महाराज को भी नारद मुनि मिले, वो भी 5 साल के ध्रुव महाराज, और ध्रुव महाराज निकल पड़े थे बदला लेने। वो भगवान को ढूंढने नहीं निकले थे, ध्रुव महाराज के अंदर बदले की आग थी कि मुझे बदला लेना है, किससे? मेरे जो पिता और वो मेरी सौतेली मां उत्तानपाद और सुरुचि से बदला लेना, मुझे ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए। तो उस बदले की भावना से वो निकले, नारद मुनि मिलते हैं। और नारद मुनि, बहुत से श्लोक हैं चतुर्थ स्कंद में जिसमें नारद मुनि समझा रहे ध्रुव महाराज को कि अरे ये सब में मत पढ़ो तुम, तो बहुत उनको समझाने की कोशिश की। ध्रुव महाराज ने कहा कि देखो मैं जिस उद्देश्य से जा रहा हूं, यदि उसमें आप सहायता कर सकते हो तो कुछ बोलो, नहीं तो आप अपने रास्ते नापो, मैं अपने रास्ते। सीधा सीधा बोल दिया नारद मुनि को। तो नारद मुनि ने ज्ञान देने की कोशिश की ध्रुव महाराज को, परंतु आवरण थोड़ा ज्यादा था। प्रहलाद महाराज की तुलना में ध्रुव महाराज के ऊपर आवरण थोड़ा ज्यादा था, इसलिए नारद मुनि ने कहा ठीक है, तुमको वो ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहिए ना, उसके लिए विधि साधना ये है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका जप और ये योग साधना 6 महीने। और फिर जब उन्होंने वो किया तो धीरे धीरे वो जो आवरण है, वो जो मैल है, वो धुलने लगा। और फिर 6 महीने के पश्चात जब भगवान का दर्शन हुआ ध्रुव महाराज को, तो ध्रुव महाराज एक शुद्ध भक्त बन चुके थे। और फिर उनकी जो प्रार्थनाएं, भगवान ने उनको वो शक्ति दी, और जो उन्होंने प्रार्थनाएं भगवान को अर्पित की वो एक परम शुद्ध भक्त की प्रार्थनाएं। और फिर उन्होंने विलाप भी किया कि नारद मुनि मुझे यही ज्ञान 6 महीने पहले देने की कोशिश कर रहे थे, परंतु मैं इतना भागा। आई वॉज लुकिंग फॉर ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास, वेर इन नाउ आई हैव गॉट द रेयर डायमंड ऑफ योर प्योर डिवोशन सर्विस माई डियर लॉर्ड। दैट वॉज ध्रुव महाराज रियलाइजेशन, बट इट बिगैन लिटिल स्लो एज कंपेयर टू प्रहलाद महाराज। अब शिशु एवं गर्भ, इसके संदर्भ में शास्त्र से उदाहरण नल, कुंवर और मणिग्री। अब ये देखिए, शिव के अनुचर कैलाश पर्वत में शिवजी के एसोसिएट बने हुए और वहां की गंगा, यहां हमारे जो पृथ्वी की जो गंगा है वो नहीं, मंदाकिनी गंगा में ये पूरे नशे में धुत और नग्न अवस्था में इन स्त्रियों के साथ विहार कर। अब सोचिए, जहां पर शिवजी के पार्षद सारे ऋषि मुनि विचरण करते रहते हैं, उस ब्रह्मचर्य आश्रम में ये लोग ये कांड कर रहे हैं। और नारद मुनि पहुंच गए वहां पर, तो नारद मुनि पहुंचे तो वो जो स्त्रियां थी वो तुरंत उन्होंने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु ये नलकोर और मणिग्रीव इतने ज्यादा वो नशे में धुत थे, तो नारद मुनि को देखकर उनको क्रोध आया कि इसको कोई अकल नहीं है, कोई भी जगह पर आ जाता। हाँ, इस प्रकार से वो व्यक्त की कि भाई यहां पर आना चाहिए, सन्यासी है, कहीं पर भी घूम रहा है, हमारी प्राइवेट पार्टी चल रही है, तुम जाओ कहीं भागवत कथा में बैठो, तुम इधर किधर आ रहे। तो वो नारद मुनि के ऊपर उन्होंने क्रोध व्यक्त किया, मतलब अपने आप को संभालना तो दूर, वो नारद मुनि पर क्रोध करने लगे। तो नारद मुनि ने समझा कि इनके ऊपर आवरण बहुत ही गहरा है, शिशु और गर्भाशय का, तो इनको ठीक करने के लिए इनको शाप देना हो। और क्या, वृक्ष, वृक्ष योनि में जाओ, क्योंकि तुम्हारी चेतना इतनी ढकी हुई है, तो तुम उस योनि में रहो जिस योनि में इस प्रकार की चेतना वाले जीव रहते। परंतु नारद मुनि का कृपा, नारद मुनि का अनुग्रह और उनकी कृपा क्या थी कि पेड़ तो बनाया परंतु नंद महाराज के आंगन में, ब्रजमंडल में, वृंदावन में, नंद महाराज के आंगन में बनाया, ताकि उस आवरण में होने के बावजूद भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और शुद्धिकरण तुम्हारा होगा। और नारद मुनि ने स्मरण भी, उनकी स्मृति बनाए रखी कि उन्होंने क्या गलती की, किस गलती के वजह से, तो वो एक और कृपा नारद मुनि की थी। तो क्योंकि आवरण इतना गहरा था इसलिए इस प्रकार से दंडित करना पड़ा नारद मुनि को, उनको हिलाने के लिए। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे जो कोई जितने निद्र अवस्था में होता है, जितना ज्यादा गहरी निद्रा में होता है, उतना ज्यादा उठाना पड़ता है, उतना ज्यादा हिलाना पड़ता है, उतना ज्यादा चिल्लाना पड़ता है। कई होते हैं जिनकी बहुत नींद कच्ची होती है, ऐसी कोई आहट होती है उड़ जाते हैं, क्या क्या हुआ। और कई होते हैं कि पूरा ब्रह्मांड उल्टा सीधा हो जाए, वो करवट भी नहीं बदलेंगे। तो यहां पर इनको उस तमोगुण से जगाने के लिए नारद मुनि को शाप देना पड़ा। तो नलकुंवर और मणिग्री उदाहरण है शिशु एवं गर्भ, ये जो आवरण इसका। अब ये जो आक्रमण की तीन स्थितियां हैं, आक्रमण कौन कर रहा है, महाशत्रु, हरि बोल, गीतामृत चल रहा है, काम वासना का आक्रमण चल रहा है। तो हमें इन तीन स्थितियों में क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला उदाहरण लेंगे जो भगवान ने आज के श्लोक में दिया है, अग्नि एवं धुआं। तो धुएं को कम करने के लिए आपको अग्नि को बढ़ाना होगा, अग्नि का जो तेज है वो जितना बढ़ेगा उतना धुआं कम होगा। तो फैनिंग, तो उसके लिए जो क्या बोलते हैं उसको, रेमेडी, रेमेडी है वो है फैनिंग। दूसरा जो उदाहरण, दर्पण एवं मैल, उसके लिए आपको एक कपड़ा लेना होगा और पानी लेना होगा और साफ करना होगा। और शिशु एवं गर्भ के लिए क्या है, पेशेंस, जब वो 9 महीने के बाद शिशु बाहर आएगा। इसलिए ये स्थिति में वो जो पेड़ की योनि में रहते हैं उनको केवल पेशेंटली खड़े रहना होता है, फिर दूसरी योनि में वो लोग जा सकते हैं। तो ये 3 रेमेडी बताए हुए हैं इसके संदर्भ में। तो अब हम इसको लेंगे, तो फैनिंग जो है उसकी तुलना हम किससे कर सकते हैं, गुड एसोसिएशन। जैसे प्रहलाद महाराज का उदाहरण, कि प्रहलाद महाराज, उनके अंदर वो अज्ञात सुकृति थी, चिंगारी थी। नारद मुनि ने अपने सत्संग से उस चिंगारी को अग्नि में प्रज्वलित किया, अग्नि में परिणित किया, और ऐसी अग्नि जो कि उनके धुएं से ज्यादा दैदीप्यमान थी। अब यहां पर देखिए, कई बार होते हैं कि हम लोग दूसरों को गुड एसोसिएशन देना चाहते हैं, तो हम फैनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इतना जोर से इंडस्ट्रियल फैन चालू करते हैं कि उसकी थोड़ी सी जो चिंगारी थी वो भी उड़ के कहां जाती, समझ में नहीं आता, वो भी फिर कभी आता नहीं, क्योंकि एक साथ इतना बड़ा इंडस्ट्रियल फैन चालू कर दिया। तो इसलिए हमको पता होना चाहिए कि चिंगारी को धीरे 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 उसका विकास करते हुए उसको अग्नि में परिणित करना है। सो वन शुड नो हाउ मच टू फैन, वेन टू फैन। तो नारद मुनि बहुत एक्सपर्ट हैं ये फैनिंग एक्टिविटी में, वो जानते हैं कि कितना फैनिंग करना है और कितना नहीं करना है। जैसे ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज को उन्होंने थोड़ा सा फैनिंग किया, नहीं कुछ जमा नहीं, तो तुरंत चलो भाई तुम पोता लो, तुमको तो साफ करना है अपना दर्पण, इसलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय उनको दिया। प्रहलाद महाराज को गर्भ के अंदर वो कहां चैंटिंग कर पाएंगे, कौन सा आसन कर पाएंगे, इसलिए तुम सुनो, केवल तुम केवल अंदर गर्भासन में श्रवण करो, उसके द्वारा उनको ऊपर उठाया। अब क्लेंजिंग, जो हमने दूसरा रेमेडी लिया था वो क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं अपनी शिक्षाओं में कहा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम। दोनों उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने दिया। तो सबसे पहला उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, कि हमारा जो चित्त है वो दर्पण के समान है, और इस दर्पण के ऊपर कितने जन्मों से मैल हमने चढ़ा रखा है, और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये क्या है, ये हम क्या बोलते हैं, फड़का मार रहे हैं, फड़का, इसको मार्जनम, साफ कर रहे हैं। तो होता है क्या है, कई बार आप देखो दर्पण के ऊपर जो मैल है बहुत ज्यादा वो स्टिकी हो जाता है तेल के वजह से, प्रदूषण के वजह से, तो उसको रगड़ना पड़ता है। ऐसे ही केवल सूखे कपड़े से नहीं हो, उसको गीला करके फिर, तो कलयुग में हमारा दर्पण किस प्रकार का है, इतना मैल, और वो भी ऐसा मैल, सब प्रदूषण, सब प्रकार के बाकी के तेल वगैरह लग लग के वो एकदम चिपक गए, तो उसको एकदम रगड़ रगड़ के हमको, इसलिए जब चैंटिंग करते समय कई भक्त देखो एकदम रगड़ रगड़ के चैंटिंग करते, एकदम तीव्रता से चैंटिंग करते, तो समझ में आता है कि एकदम रगड़ लग रही है उस दर्पण के ऊपर। और कई बार होता क्या है कि हम चैंटिंग करते हैं, रगड़ते हैं, साफ करते हैं, थोड़ा थोड़ा हम अपने आप को दिखते देखते हैं उसके अंदर, अपना प्रतिबिंब दिखता है, हाँ अरे मेरा आत्मा दिख रहा है इसके अंदर। फिर बाद में जैसे ही बिड बैग रखा, दिन भर यहां वहां गए, वापस से मैल चढ़ गया। अरे किधर गया? दिख रहा था सुबह तो, दिख रहा था, अभी किधर गया? फिर रात में वापस मैल चढ़ जाता, तो सुबह वापस वो फिर पोता लेके वापस शुरू करना पड़ता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे। तो इसलिए प्रभुपाद ने जो दिया है, और चैतन्य महाप्रभु ने फिर आगे अपनी शिक्षाओं में क्या कहा कि क्योंकि कलयुग में हम लोग हैं, और कलयुग में हम लोग कैसे हैं, जैसे किसी का घर हाईवे पे हो। किसी का घर अगर हाईवे पे है तो जितनी गाड़ियां ट्रक वगैरह जा रहे हैं सब धूल हर मिनट अंदर आ रही, तो हर आधे घंटे झाड़ू मारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तो इसलिए कलयुग में हम लोग सब ये माया के हाईवे पे अपने अपना घर बना रखे हैं, इसलिए हर मिनट इधर जाओ उधर जाओ मैल आता रहता आता रहता आता रहता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीर्तनीय सदा हरि, हर समय झाड़ू पोछा साथ में रखो और ये क्लेंजिंग चालू रखो। और ये जो पेशेंस जो रेमेडी है वो क्या है कि गुड एसोसिएशन और क्लेंजिंग, ये चालू रहेगा, परंतु फिर भी जो फाइनल रिजल्ट है उसके लिए हमको पेशेंट, उत्साह, निश्चय और धैर्य, धैर्य रखते हुए हमें ये गुड एसोसिएशन और चैंटिंग का जो प्रोसेस है इसको जारी रखना, तब जाकर हम इन आवरणों से बाहर। तो ये जो तीन उदाहरण भगवान ने दिए हैं और जो तीन हमने उपाय इसके संदर्भ में आज समझे हैं, तो उसमें यह समझना है कि हमको इस आवरण से ऊपर उठना है या उसे साफ करना है। अब यहां पर भगवान एक जो सूक्ष्म मुख्य मुद्दा कह रहे हैं वो किसके ऊपर भगवान जोर दे रहे हैं, ज्ञान के ऊपर आवरण। तो इसके संदर्भ में हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि माया जो है वो जीव के ऊपर दो प्रकार से प्रहार करती, आवरणात्मिका शक्ति की। पहले माया देवी जीव को ढक देती, जैसे आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं ना आवरण, तो पहले ढक देती है और फिर प्रक्षेपात्मिका फिर मारती। तो आवरणात्मिका शक्ति क्या है, कवरिंग पोटेंसी, और प्रक्षेपात्मिका है फिर उसको फेंकती है, ये योनि में वो योनि में। जैसे इसका उदाहरण मुझे याद है, हमारे एयरफोर्स की ट्रेनिंग में हमारा एक जो हमारे जिसको हम बटालियन कहेंगे, बटालियन का जो लीडर बनाया था, हम में से किसी को एक को बनाया था, तो हमारे ही बैरक्स में रहता था, मतलब एक नंबर का हिटलर टाइप व्यक्ति था, बेमतलब लोगों को पनिशमेंट देना, ये वो तकलीफ में रखना। तो मुझे याद है एक बार रात के समय 9:30 बजे सब लाइट्स ऑफ करके अब सोना है सबको, उस समय कई हमारे जो बैरक्स के लोग, उन्होंने निश्चय किया कि इसको आज हम एक सबक सिखाएंगे। तो सबक कैसे सिखाएंगे भाई, कोई अगर एक सिखाएगा तो उसकी रिपोर्ट जाएगी। तो हफ्ते के एक दिन रात को 9:30 बजे लाइट जाती थी, तो उनको पता था कि अभी लाइट जाने वाली है। तो लाइट गई, उन्होंने वो जो फौजी कंबल होता है तो कंबल उठाया, और कंबल से पहले आवरणात्मिका शक्ति उसको पूरा कंबल से आवृत किया, और फिर प्रक्षेपात्मिका। तो माया देवी भी वैसे ही करती, पहले अपने ज्ञान को ढक देती है और फिर प्रहार करती। जैसे हमने कुछ श्लोक पहले, एक श्लोक में ये श्लोक लिया था, अंधस्य में ऋत विवेक महाधनस्य चौरेर प्रभो महाबलिभिर इंद्रिय नामधेय मोहांद कूप कुहरे विनिपाति तस्य लक्ष्मी नरसिंह मम देहि करावलंबम। इस सुंदर श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं कि कुछ चोर हैं जिन्होंने मेरी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी, जैसे कि आवरणात्मिका शक्ति। तो इन चोरों ने सबसे पहले मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मेरे विवेक शक्ति को हर लिया, ऋत विवेक। और उसके पश्चात क्योंकि ये महाबली भीर है, इन्होंने मेरा जो सबसे बहुमूल्य धन है उसको चुरा लिया, और वो क्या है, कृष्ण प्रेम, उसको चुरा लिया। और इतना ही नहीं, प्रक्षेपात्मिका मोहांद कूप कुहरे, मुझे अंधकूप में, इस भौतिक संसार के अंधकूप में फेंका। तो इस श्लोक में शंकराचार्य दोनों माया देवी की जो शक्ति है उसके विषय में बोल रहे हैं, आवरणात्मिका शक्ति और प्रक्षेपात्मिका। तो शंकराचार्य बोलते हैं कि ये चोर हैं मेरी ही इंद्रियां, जो पहले मेरे ज्ञान को ढकती हैं और फिर मुझे उठाकर अंधकूप में फेंकती हैं, मेरी ही इंद्रियां। तो आज के श्लोक में भगवान ने आवरणों के विषय में बताया है, इसलिए हमने ये मुद्दा लिया है कि माया देवी कैसे हमारे ऊपर आवरण डालती है। तो हम ये आवरण शक्ति है इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। अब देखिए, आवरण दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का आवरण होता है माया देवी का जीव के ऊपर, जब अंधकार उसे कुछ दिखाई नहीं देता, उसको बोलते हैं डार्कनेस। और दूसरा प्रकार का आवरण है इल्यूजन, उसके अंदर उसको दिखाई दे रहा है लेकिन गलत दिखाई दे रहा है, उसको बोलते हैं माया। माया मीन्स दैट विच इज नॉट। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, ये समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। तो जो अंधकार रूपी आवरण है वो जो लोअर स्पीशीज हैं उनके लिए, उनको वो भ्रमित नहीं रहते, उनको दिखाई नहीं देता, पूरे अंधे हैं। परंतु जो इल्यूजन है वो हम मनुष्यों पर ज्यादा हावी है। तो जो भ्रम का आवरण है वो हम मनुष्यों के ऊपर ज्यादा है। और भ्रम का आवरण क्या है, एक इसका उदाहरण हम आपको देंगे। ये देखिए, ये क्या है, लिखा भी है, मृग तृष्णा। कितनी बार हमने अनुभव किया है, हमारी आंखों को क्या दिख रहा है, यहां पर जल दिख रहा है, परंतु वो है नहीं। हमारी आंखें ये नहीं कि अंधी है, यहां पर दिख रहा है, परंतु आंखों के सामने इल्यूजन का आवरण है, इसलिए हमको वहां पर जो है वो नहीं दिख रहा और जो नहीं है वो दिख रहा है। इसको बोलते हैं the covering of illusion। ये मैं क्यों इस पर इतना जोर दे रहा हूं, क्योंकि हम मनुष्यों में, मनुष्य योनि में हम लोग जो देखना चाहिए परम सत्य और हमारी आत्मा को और इस भौतिक संसार के स्वरूप को, वो नहीं हम देखते, और उल्टा इस भौतिक संसार में, इस शरीर में, धन संपत्ति में, ऐशो आराम में, उसके अंदर सारा सुकून और आराम देख रहे हैं। मतलब बाकी की योनियों में और हम में अंतर क्या है कि माया देवी हमको जो नहीं देखना चाहिए वो दिखा रही और जो देखना चाहिए वो उसमें अंधा बना रही। तो आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे और जो हम ये पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं, अब कौन से पॉइंट पर चर्चा कर रहे हैं, हम इल्यूजन। हम सब यहां पर अपनी आंखें खोले हुए हैं, हम सब यहां पर एक बुद्धि के साथ बैठे हुए हैं, हम हमारी आंखों के साथ, हमारी बुद्धि के साथ चीजों को, वस्तुओं को, स्थितियों को समझते हैं, देखते हैं कि नहीं। हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, दुनिया देखे हैं कुछ हद तक, आंखें खुली है कुछ हद तक, है ना? अभी और खुल जाएंगी आपकी आंखें इस वीडियो को देखोगे तो। इस वीडियो के बाद मैं पूछूंगा कि आपकी आंखों ने क्या देखा और इस वीडियो ने क्या दिखाया और सच्चाई क्या है। लाइट्स ऑफ। इसको बोलते हैं माया। कि अब हम लोग कोई दिमाग नहीं लगा सकते कि कैसे उस व्यक्ति को आधा काटा, वो काटने के बाद नीचे से उसने दिखा भी दिया कि ये कटा हुआ है, उठा के अलग रख दिया है, उसके हाथ पैर चल रहे हैं। तो मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि क्या वो व्यक्ति वास्तविक रूप में कटा था? पूरा विश्वास है आपको? डाउट आ रहा है ना? माया देवी यही करती है। हमारे आंखों के, खुली आंखों के सामने जो सच्चाई है उसको झूठ में परिणित करती है और जो झूठ है उसको सच्चाई में। क्या देखा आपने? वही हुआ, दैट विच इज नॉट। तो यहां पर हम मनुष्यों, एक व्यक्ति सोचिए, ये कौन है? ये हम लोगों की तरह, ये जो जादूगर कौन है? हम लोगों की तरह एक जीव है। तो सोचिए इस जीव के अंदर अगर इतनी शक्ति है हमें भ्रमित करने की कि हमारे आंखें कितना भी कोशिश करें कोने में यहां वहां, लेकिन आंखें क्या देख रही हैं वो सच्चाई नहीं है। तो सोचो माया देवी जो कि भगवान की स्वयं की शक्ति है, उसके अंदर वो जो उसके अंदर जादू है वो किस प्रकार का जादू होगा कि इतने सारे दर्शक पूरे सृष्टि के वो सब इतने जन्मों से माया देवी का ये जो जादू का खेल है उसको देखकर अभी तक ऐसे हैं। ऑडियंस में देखा था ना आपने ऐसे? तो हम लोग भी माया देवी का ये मैजिक शो देखे ऐसे हो रहे हैं, जॉज ड्रॉप्ड जिसको बोलते हैं। तो ये मुद्दा हम इसलिए ले रहे हैं कि हमारे ऊपर अंधकार नहीं है, उसका आवरण नहीं है, परंतु दूसरा जो कि खुली आंखों से हम देख नहीं पा रहे, या हम ये कह सकते हैं कि आंखों वाले अंधे, ये ठीक रहेगा, ब्लाइंडेड विथ आईसाइट। अरी बोल। तो पांच प्रकार का अंधापन नीति शास्त्र में बताया गया। सबसे पहला जन्मांध, कई होते हैं जो जन्म से अंध, जैसे धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र वो केवल शारीरिक रूप से अंधा नहीं था, आगे हम देखेंगे कि और अलग अलग प्रकार का अंधापन क्या है। मदांध, अहंकार से जो व्यक्ति अंधा, जैसे नलकुंवर और मणिग्रीव वो इस कैटेगरी में, इतना अहंकार कि हम कुबेर के पुत्र हैं, हम शिव के अनुचर हैं, हम कैलाश में विहार कर रहे हैं, हमारे पास इतना धन दौलत संपत्ति ये सब यश है और ये नारद मुनि कौन है, तो मदांध। फिर कामांध, जो काम वासना से अंधा हो जाए, जैसे अजामिल अंधा हो गया था, उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। और क्रोधांध, जैसे भगवान ने कहा काम एश क्रोध एश, जब काम संतुष्ट नहीं होता तो व्यक्ति क्रोध में परिणित होता है। और फिर लोबांध। तो ये अलग अलग प्रकार का अंधापन है और ये सब कुछ मनुष्यों के लिए कहा गया है नीति शास्त्र में। ये सारी चीजें हम मनुष्यों के लिए कही गई है कि शारीरिक रूप से तो हमारी दृष्टि है, आंखें हैं, 6x6 विजन होगा, परंतु फिर भी दिखाई नहीं दे रहा। पश्यन अपि न पश्यति। अच्छा, ये एक है कि माया देवी के द्वारा हम आवृत हैं और अब हम उनकी एजेंसी लेके दूसरों को आवृत करें, जैसे वो जादूगर। ऑलरेडी हम इल्यूजरी वर्ल्ड में हैं, उसके अंदर उसने और इल्यूजन क्रिएट किया। तो होता क्या है कि लोग एक तो खुद भ्रम में रहते हैं और फिर उस भ्रमित अवस्था में वो दूसरों को और भ्रम में डालते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति सिनेमा देखने जाता है तो वहां पर वो व्यक्ति स्वयं किसी भ्रम में है और जो दर्शक देखने जा रहे हैं उनको और भ्रम में डाल रहा है। उसका भ्रम क्या है कि मुझे जो पैसे मिल रहे हैं, मुझे जो यश मिल रहा है, उसके वजह से मैं सुखी रहूंगा, उसका वो भ्रम है। और जो दर्शक जा रहे हैं वो देख रहे हैं उसको कि अरे कितना बड़ा बंगला है इसका, ऐसी गाड़ी चला रहा है, इमारतों से कूद रहा है, चढ़ रहा है, ये वो। तो दर्शक देखकर वो और भ्रमित होते हैं, वो रोते हैं, हंसते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो भ्रमित हो रहे हैं। तो हो रहा क्या है कि अंधा यथांधेर जिसको कहते हैं प्रभुपाद ने, ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, बोथ फॉल इन द डिच। जैसे गांव में एग्जाम का रिजल्ट निकला तो पिताजी ने अपने बेटे से पूछा, रिजल्ट के बाद वो जब घर आया तो पूछा, क्या भाई क्या रिजल्ट निकला तेरा? तो ये कहता है प्रिंसिपल का लड़का फेल हो गया। तो उसने बोला, अरे तेरा रिजल्ट क्या आया? तो कहता है अपने गांव का सरपंच का लड़का वो भी फेल हो गया। अरे वो तो ठीक है, तेरा रिजल्ट क्या आया? तो लड़का कहता, वही तो मैं बोल रहा हूं, तू कौन सा प्रधानमंत्री है? अब देखिए फेल ये हुआ है और आरोप किसके ऊपर डाल रहा है। इसको कहते हैं अंधा यथांधे, कि एक व्यक्ति भ्रमित है वो कईयों को लेके भ्रमित करता है और वो कई और जुड़ जाते हैं, वो और कईयों को भ्रमित करते हैं, इसलिए सभी मिलके एक दूसरे को भ्रमित कर रहे हैं और आवरण एक दूसरे के ऊपर डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। तो कई बार माया देवी को कलयुग में कुछ काम भी करने की जरूरत नहीं, वो जानते हैं आपस में लोग कर रहे हैं लड़ मर के, या अपने आप को दंडित कर रहे हैं, अपने आप को इनाम दे रहे हैं कि भैया तूने इतना अच्छा भ्रमित किया, ए ले तेरे को हम ऑस्कर अवार्ड देंगे, तेरे को ये देंगे, तूने लोगों को कैसा भ्रमित किया, खुद इतना भ्रमित, लोगों को और भ्रमित किया, ले तेरे को अवार्ड। तो माया देवी भी हंसती है आपस में, मेरे को कुछ काम करने की जरूरत नहीं, छुट्टी पे माया देवी कलयुग में 432,000 साल की छुट्टी चल रही है उनकी, जरूरत नहीं उनको, हम लोग सब फ्रेंचाइजी लेकर उनका काम कर रहे हैं आप। तो अब आवरण के विषय में हमारे आचार्य ने कहा है कि एक है महामाया और एक प्रकार का आवरण है उसको कहा गया है योग माया। तो महामाया इस भौतिक संसार में और योग माया वहां पर भी भगवान की एक माया, वो अंतरंगा शक्ति है। और ये महामाया कौन सी है? ये बहिरंगा शक्ति। तो वो भौतिक हम जीवों के लिए है और वो आध्यात्मिक संसार में शुद्ध भक्तों के लिए। तो यहां की जो महामाया है उसका आवरण बद्ध जीवों के ऊपर किसका है? आज के श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं, काम का। और योग माया आध्यात्मिक संसार में वो एक आवरण डालती है शुद्ध भक्तों के ऊपर, और वो काय का आवरण है? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने, प्रेम का अंजन या प्रेम का आवरण डालती है। तो फिर से यदि हम महामाया और योग माया के उदाहरण लें तो यहां पर उदाहरण है दुर्योधन। दुर्योधन और यशोदा, इसमें देखिए भगवान ने दोनों को अपना विश्वरूप दिखाया, दुर्योधन को भी विश्वरूप दिखाया और पूरा नहीं आधा दिखाया दुर्योधन को, माता यशोदा को अपना पूरा विश्वरूप दिखाया। तो माता यशोदा ने जब भगवान का विश्वरूप भगवान के मुख में देखा तो माता यशोदा का जो प्रेम वो और बढ़ा, और दुर्योधन ने जब विश्वरूप देखा तो उसका जो द्वेष है भगवान के प्रति वो बढ़ा। तो अंतर देखिए, दोनों के आवरण में अंतर देखिए। तो जो माया भगवान के निकट हमको ले जाए वो है योग माया, और जो माया भगवान से दूर हमको ले जाए वो है महामाया। तो ये नहीं समझना चाहिए अरे महामाया मतलब बड़ी होगी तो वो अच्छा है, जैसे उदाहरण दामोदर लीला का अगर हम लें तो दामोदर लीला में माता यशोदा भाग रही है कृष्ण के पीछे पकड़ने के लिए, और दशम स्कंद में एक और उदाहरण है काल यवन का, ये एक राक्षस ये भी भगवान के पीछे भाग रहा था भगवान को पकड़ने के लिए। जब भगवान रण छोड़े, भगवान को नाम मिला रण छोड़ रहा है, तो ये काल यवन भगवान के पीछे भाग रहा था भगवान को पकड़ने के लिए। तब ये दोनों उदाहरण लें, एक तरफ कालयवन भाग रहा है भगवान को पकड़ने के लिए और एक तरफ यशोदा भाग रही भगवान को पकड़ने के लिए। अब देखिए कालयवन जो कि बहुत शक्तिशाली था यशोदा मई की तुलना में, यशोदा मई तो एक वो ग्वालन थी, उनका थोड़ा भारी शरीर था, परंतु यशोदा मई भगवान को पकड़ पाई और कालयवन नहीं पकड़ पाया। क्यों? क्योंकि काल यवन बाहरी रूप से हल्का था और बहुत सुदृढ़ था यशोदा माई की तुलना में, परंतु उसके अंदर जो वजन था जिसके वजह से वो पकड़ नहीं पा रहा था वो वजन उसके पाप का था। सो काल यवन वॉज आउटसाइड एक्सटर्नली नॉट एज हैवी एज यशोदा, बट इनसाइड ही वॉज अ ह्यूज फैट पर्सन बिकॉज ऑफ हिज सिंस, फैट सिंस। और माता यशोदा बाहर से भारी थी परंतु अंदर से अनघ, कोई आवरण नहीं था किसी भी शत्रु का, इसलिए माता यशोदा भगवान को पकड़ पाई। तो यदि हमें भगवान को पकड़ना है तो केवल बाहर से वजन लूज करने से नहीं होने वाला है, हमको अंदर का जो वजन है, अंदर का जो वजन क्या है, ये काम का, क्रोध का, लोभ का, मत्सर अहंकार इत्यादि, ये सब का फैट रिड्यूस करना है, ये सब से हमको अपने आप को आवरणों से मुक्त करना है। इसलिए मैं इस हमारा जो इस्कॉन का जो एक्रोनिम है इसके विषय में सोच रहा था कि भगवान ने हमारे लिए मनुष्यों के लिए आज का जो उदाहरण दिया है वो कौन सा उदाहरण है, अग्नि और धुएं का। हम मनुष्यों के लिए भगवान ने आज का उदाहरण दिया अग्नि और धुएं का, तो वो क्या है, जैसे प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था ये जो नाम दिया इस संस्था को, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ISKCON, तो इसके विषय में अगर इसका विभाजन करें तो प्रश्न ये पूछ रहे हैं प्रभुपाद, इज केसी ऑन, केसी मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस, और आज के श्लोक में भगवान ने उसकी तुलना की है अग्नि से, क्या हमारे अंदर वो अग्नि ऑन है, क्या हमारे अंदर वो अग्नि जल रही है, धुआं होगा और उस धुएं के वजह से दूसरों के आंखों में भी वो धुआं जा रहा है, हमारी भी आंखों में भी धुआं जा रहा है, परंतु नारद मुनि ने जैसे प्रहलाद महाराज को अपना संग दिया वैसे ही हम यदि भक्तों के संग में आकर वो जो थोड़ी सी कृष्ण भावनामृत हमारे अंदर है क्या उसको फैनिंग हम दिला रहे हैं यहां पर आकर, और वो कृष्ण कॉन्शियसनेस ऑन है कि नहीं। यदि ऑफ है तो ऑफ से ऑन करने के लिए क्या करना है,
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।
इस कौन, मतलब इस कौन में आकर ये जो हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस है इसको ऑन करना है। और केवल ऑन करने से नहीं होगा, हमको ये अग्नि ऐसी प्रज्वलित करनी है, इतनी प्रज्वलित करनी है कि जैसे हरिनाम संकीर्तन। इसलिए राधानाथ महाराज अपने प्रवचन में, उनका मैंने जो पहला प्रवचन महाराज का सुना उसका टाइटल था फायर ऑफ हरिनाम। तो महाराज ने उसमें उदाहरण दिया कि जैसे अग्नि की जो लपटें होती हैं वो ऊपर की ओर हर समय जाती रहती हैं, वैसे ही हरिनाम संकीर्तन में जो भक्तों के हाथ है वो हर समय ऊपर की ओर जाते रहते हैं, जैसे अग्नि की जो लपटें होती हैं, द फ्लेम्स ऑफ फायर। तो उसी प्रकार से जितना हम इस हरिनाम संकीर्तन की अग्नि में, इस संग में रहेंगे, उतना हमारा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस है वो ऑन स्विच, ऑन मोड में रहेगा। और जितना हम ये एसोसिएशन से दूर जाएंगे उतनी अग्नि कम होती जाएगी, उतना फिर वो ऑफ होने का खतरा है। तो भगवान आज के श्लोक में हमें ये अग्नि और धुएं का उदाहरण देते हुए हमें एक आशा बांध रहे हैं, और बाकी के उदाहरण देखकर हमको चेतावनी दे रहे हैं कि हम उस आवरण के वशीभूत होकर हम जो दूसरी योनियां हैं उसमें न गिरें, बल्कि जो थोड़ी बहुत अग्नि है उसको प्रज्वलित कर अपना जीवन सार्थक करें। अब अगले श्लोक में भगवान ने इसी काम शत्रु को उसका विश्लेषण करते हुए आगे बताया कि कैसे ये जो ज्ञानी हैं उनके ऊपर भी इसका आवरण चढ़ा हुआ रहता है, ज्ञानियों का नित्य शत्रु। और इसकी चर्चा हम करेंगे अगले बुधवार को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद्गीता की। श्रील प्रभुपाद की।